पाठ चार अध्याय तीन पद 11 में एक आकर्षक दिव्य निर्देश की शुरुआत होती है जो ईसाई धर्म और यहूदी धर्म दोनों में लगभग लुप्त हो चुका है। ये एक निर्देश है जो मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था और आपसे कहा था कि हम इसे बाद में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, तो हम यहां हैं। और निर्देश पद 11 से 13 में आता है। यह है कि लेवियों को इसराइल के अन्य गोत्रों के ज्येष्ठ पुत्रों की जगह लेनी है, अर्थात जिससे परमेश्वर ने किसी विशेष तरीके से इसराइल के गोत्रों के सभी ज्येष्ठ पुरुषों को विशेष और अपने लिए अलग माना, एक प्रकार का स्वामित्व या परमेश्वर द्वारा गोद लेना, अब उसने इसराइल के सभी ज्येष्ठ पुत्रों के स्थान पर कुल मिलाकर लेवियों को अपना बना लिया है। इसराइल के ज्येष्ठ पुत्रों की वह विशेष स्थिति जो अन्य राष्ट्रों के ज्येष्ठ पुत्रों से अलग है, निर्गमन 13 का 1 में आइए, जब इसराइल के ज्येष्ठ पुत्रों को उनके फसह के उद्धार को स्मरण के रूप में परमेश्वर को याद किया गया। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि बाइबल का एक सिद्धांत यह है कि सभी ज्येष्ठ, या बेहतर कहें तो ज्येष्ठ, क्योंकि यह मनुष्यों, पशुओं और पौधों पर लागू होता है, सभी चीजों में प्रथम परमेश्वर का है। यह बात सिर्फ इसराइल पर ही लागू नहीं होती बल्कि सभी पर लागू होती है, कम से कम उन सभी पर जो इसराइल के परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हमने इस सिद्धांत को मिस्र में लागू होते देखा जब यहोवा ने उन घरों में सभी मनुष्यों और पशुओं के पहलौठों को मार डाला जिन्होंने अपने घरों के दरवाजों की चौखटों पर एक वर्षीय मेरहे का खून लगाकर अपने पहलौठों की रक्षा नहीं की थी। पहला फसह। फिर भी जिस तरह इसराइल पूरी तरह से परमेश्वर के अलग किए गए लोग थे, उसी तरह इसराइल के सभी ज्येष्ठ पुत्रों को अन्य जातियों के ज्येष्ठ पुत्रों से ऊपर एक विशेष दर्जा प्राप्त था। वास्तव में निहितार्थ काफी भारी है। वास्तव में एक लगभग निश्चितता है कि पुरोहिती की स्थापना से पहले ज्येष्ठ पुत्रों को परमेश्वर के सामने एक पवित्र दर्जा प्राप्त था। पुजारी वर्ग के अस्तित्व में आने से पहले, और याद रखें इसराइल का पुजारी वर्ग मूसा और माउंट सिनाई तक अस्तित्व में नहीं था, प्रत्येक परिवार के ज्येष्ठ पुत्र का कर्तव्य था कि वह परिवार की ओर से बलिदान और अन्य अनुष्ठान करे। ज्येष्ठ पुत्र एक तरह से पुजारी पूर्व पारिवारिक पुजारी था, और जैसा कि हमने कई अवसरों पर चर्चा की है कि यह प्रथा, जैसा कि कई अन्य थे, इसराइल के लिए न तो अनोखी थी और न ही नई। हमें इस समय से 1000 साल पहले के दस्तावेज मिलेंगे मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से, जो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र के लिए कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करते हैं, और इन कर्तव्यों में सबसे प्रमुख था पूर्वजों की पूजा और अनुष्ठान से जुड़ी सभी चीजों को पूरा करना। यह कर्तव्य ज्येष्ठ पुत्र की जिम्मेदारी से शुरू होता है कि वह अपने माता पिता को उचित तरीके से दफनाए। इसके बाद ज्येष्ठ पुत्र को अपने मृतक माता पिता की आत्माओं के उपयोग के लिए कब्र स्थल पर तेल, भोजन, यहां तक कि पानी भी लाना होता है। इन अनुष्ठानों के दौरान माता पिता के नाम का उच्चारण किया जाता था, क्योंकि किसी अनिर्धारित तरीके से व्यक्ति की याद को जीवित रखने से उस व्यक्ति की आत्मा जीवित रहती थी। अब अगर ज्येष्ठ पुत्र ने पूर्वजों की पूजा की रस्में सही तरीके से निभाई तो उसके मृत पूर्वजों की आत्माएं देवताओं से उसकी ओर से मध्यस्थता करेंगी। अगर पूजा अनुचित तरीके से की गई तो कोई मध्यस्थता संभव नहीं थी और उसके मृत पूर्वजों की आत्माएं उसके खिलाफ हो सकती थीं और उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थीं। बीमारी से लेकर फसल खराब होने तक, यहां तक कि उसकी पानी को बांझ बनाने तक, कुछ भी। मैं आपको पूर्वजों की पूजा के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह प्राचीन काल में, अब्राहम से भी पहले, पूरी दुनिया में प्रचलित थी और मूसा के समय में यह पूरे जोरों पर थी। इसलिए हम इसराइल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली और इसराइल के रीति रिवाजों में पूर्वजों की पूजा की प्रथाओं के निशान देखते हैं। हालांकि बेशक उनका इस्तेमाल एक समान लेकिन अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है, क्योंकि यहोवा ने अपने लोगों के बीच पूर्वजों की पूजा को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया। वास्तव में मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि बाइबल में कई जगहों पर मृत्यु का उल्लेख करते हुए वह मर गया और अपने पूर्वजों के पास चला गया, वाक्यांश देखने का कारण। लेकिन ज्यादातर पुराने नियम के पुराने हिस्सों में यह है कि यह अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम वाक्यांश था जो पूर्वजों की पूजा के सामान्य रिवाज को दर्शाता था। मुझे इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि मिस्र से बाहर आने वाले इजरायली पूर्वजों की पूजा में विश्वास करते थे, क्योंकि यह उस युग में लगभग सार्वभौमिक था। मैं आपको दिखाता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यह बहुत अस्पष्ट है और पुराने नियम में कहीं भी सीधे तौर पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इससे मुझे पता चलता है कि पुराने नियम को लिखने वाले लोग निश्चित नहीं थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और अलग अलग युगों में इसके बारे में अलग अलग परंपराएं थीं, जो निस्संदेह विभिन्न मध्य पूर्वी संस्कृतियों में भी सिद्ध थीं। अब चूंकि यह माना जाता था कि पूर्वजों की पूजा का व्यक्ति के अपने जीवन अच्छी या बुरी चीजों से भरा हुआ से बहुत अधिक संबंध होता है, इसलिए यह प्रत्येक संस्कृति की समग्र पूजा पद्धतियों का केंद्र बिंदु थी। विद्वान रब्बियों के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है, और मैं उनके निष्कर्षों से सहमत हूं कि इज़राइल के ज्येष्ठ पुत्र जब तक लेवी पुरोहिती की स्थापना नहीं हुई थी परिवार के पुरोहित थे, किसी संगठित तरीके से नहीं बल्कि बस एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा के रूप में। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि इज़राइल के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा, बल्कि मैं यह भी कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा। जब यहोवा ने एक ईश्वरीय रूप से नियुक्त अलग अलग पुजारियों का समूह स्थापित किया जहां अधिकार एक विशेष गोत्र के पास था, इसलिए परिवर्तन यह था कि अनुष्ठान कर्तव्यों को प्रत्येक अलग अलग परिवार के प्रभार से स्थानांतरित कर दिया गया था, जैसा कि प्रत्येक परिवार उचित समझता था। एक सामान्य कानून और अध्यादेश कानून के तहत पुजारियों के एक निर्दिष्ट समूह को और केंद्रीकृत नियंत्रण उच्च पुजारी का के तहत, और ज्येष्ठ पुत्र अब उन कर्तव्यों से मुक्त हो गया था जो उसने पहले एक पारिवारिक पुजारी के रूप में किए थे, उसकी स्थिति बदल गई थी। इस परिवर्तन को निस्संदेह एक तरह की पदावनति के रूप में देखा गया था और इसे अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया होगा। इसलिए हम देखते हैं कि लेवियों ने वह दर्जा और जिम्मेदारियां और कई कर्तव्य ग्रहण कर लिए जो पहले ज्येष्ठ पुत्रों द्वारा निभाए जाते थे। इसलिए पद 11 में हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं, मैं इसराइलियों में से लेवियों को सभी ज्येष्ठ पुत्रों के स्थान पर लेता हूं, ज्येष्ठ पुत्र से लेकर पुरोहित गोत्र तक कर्तव्य का हस्तांतरण पूरा हो गया था। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से चक्कर ने आप पर उचित प्रभाव नहीं डाला होगा, क्योंकि यह इस बात में एक महत्वपूर्ण समुद्री परिवर्तन को दर्शाता है कि इज़राइल किस तरह से काम करेगा, जो कि अतीत में उसके काम करने के तरीके के विपरीत था। और शायद इससे भी अधिक इसने इज़राइल को अन्य सभी संस्कृतियों के साथ बातचीत करने के तरीके से काफी अलग और अजीब बना दिया। पहलौठों को बदलने का आदेश यहोवा द्वारा दिया गया था, यह केवल सामान्य या प्रतीकात्मक नहीं था, यह एक एक करके किया जाना था। प्रत्येक पुरुष लेवी को इज़राइल के वर्तमान में जीवित फैलौठों के लिए एक प्रतिस्थापन होना था। हम इस आकर्षक परिदृश्य को बहुत जल्द ही विस्तार से देखेंगे। मैं आपको यह बताता हूं इससे पहले कि हम इसे फिर से पवित्र शास्त्र में पढ़ें, क्योंकि यह लेवियों की जनगणना के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था और केवल लेवियों के लिए, जिसकी आज्ञा यहोवा ने पद 14 से शुरू करते हुए दी है। अर्थात यह निर्धारित करना आवश्यक था कि कितने पुरुष लेवी थे, क्योंकि इससे यह निर्धारित होता था कि नियमित पुरुष इसराइलियों गैर लेवियों में से कितने पहलौठों को शामिल किया जाएगा, और जो शामिल नहीं थे उनके लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता थी। पिछले सप्ताह हमने लेवी के गोत्र की जनगणना से अलग इसराइलियों की जनगणना पर चर्चा की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहोवा ने लेवियों को अपने और सेवकों के रूप में अलग रखा था। कोई यह कह सकता है कि परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को याकूब से अलग करके अपना बना लिया। अब से लेवियों को इसराइल से अलग माना जाएगा। लेवियों की जो जनगणना की गई वह पूरे इसराइल के लिए अध्याय 1 में दिए गए आदेश के समान थी। हालांकि एक बड़ा अंतर यह है कि पूरे इसराइल की जनगणना में, जो वैसे तो सिर्फ पुरुष इसराइलियों की थी, गिनती के लिए पुरुष की उम्र 20 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस जनगणना का उद्देश्य सैन्य भर्ती था। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि पहला जन्म शब्द सिर्फ पुरुषों पर लागू होता है, पहली बेटी एक विरोधाभास है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहला जन्म एक पुरुष बच्चे को दिया जाने वाला पद है, न कि जन्म के साधारण क्रम से। यानी किसी पुरुष से पैदा होने वाला पहला बेटा जरूरी नहीं कि वह पद संभाले और पहले जन्म के कर्तव्यों का पालन करे, हालांकि आम तौर पर वे ऐसा करते थे। वे कर्तव्य और अधिकार और विशेषाधिकार किसी दूसरे बेटे को दिए जा सकते थे किसी भी कारण से, और ऐसा होना बहुत ज्यादा असामान्य नहीं था। वास्तव में यही बात पहले तीन कुलपिताओं के जीवन में घटित हुई। अब्राहम ने इश्माएल को जन्म दिया जो पहले पैदा हुआ, और फिर इसहाक का जन्म हुआ, लेकिन अब्राहम ने जेठा का पद इसहाक को दे दिया। इसहाक ने ऐसाव को जन्म दिया जो पहले पैदा हुआ, और फिर ऐसाव का जुड़वां भाई याकूब पैदा हुआ, लेकिन इसहाक ने जेठा का पद याकूब को दे दिया। हालांकि यह छल से हुआ था क्योंकि इसहाक का ऐसा करने का इरादा नहीं था। याकूब ने कई बेटों को जन्म दिया जिनमें रूबेन पहला बेटा था, लेकिन याकूब ने जेठा का पद यहूदा को दे दिया जो उससे पैदा हुआ चौथा बेटा था। कम से कम आंशिक रूप से रूबेन को याकूब की एक रखेल को अपवित्र करने के लिए सज्जा के तौर पर। लेवियों की जनगणना में पुरुषों की आयु की गणना केवल एक महीने की आयु से शुरू होती थी, इसलिए सबसे छोटे शिशु लड़कों को भी शामिल किया जाता था। एक महीने की आयु क्यों? दो कारण। पहला, खतना तब तक नहीं किया जाता था जब तक कि लड़का 8 दिन का ना हो जाए। खतना वह क्षण था जब एक लड़का आधिकारिक रूप से इसराइल का सदस्य बन जाता है, जिसका अर्थ है कि वह छोटा लड़का अब अब्राहम की वाचा के अधीन काम करता है। खतना होने पर वह एक इसराइली बन गया। खतना होने तक वह आधिकारिक रूप से इसराइल का सदस्य नहीं था। जनगणना में शामिल होने के लिए एक महीने की आवश्यकता का दूसरा कारण यह है कि छुराए जाने के लिए बच्चे की आयु एक महीने होनी चाहिए। इसलिए केवल एक छुराए गए व्यक्ति, एक लेवी को दूसरे छुराए गए व्यक्ति, एक इसराइली जेठा के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता था। यहूदी कानून में 30 दिन से कम उम्र के शिशु को व्यक्ति नहीं माना जाता। मैं यह नहीं कह रहा कि उसे इंसान नहीं माना जाता, यह सिर्फ इतना है कि 30 दिन की उम्र में एक स्थिति बदल जाती है जिसमें शिशु का मूल्य बढ़ जाता है। यह निस्संदेह उस युग में शिशु नैतिकता की उच्च दर के कारण हुआ, जो निश्चित रूप से अब अलग है, लेकिन सख्त यहूदी कानून के अनुसार शोक की सामान्य रस्में हैं।
अगर एक महीने से कम उम्र का बच्चा मर जाता है तो यह कानून निलंबित कर दिया जाता है। इस कानून के अन्य प्रभाव भी थे। अगर कोई गलती से एक महीने से कम उम्र के शिशु को मार देता है तो माता पिता को मिलने वाला मुआवजा बहुत कम होगा, लेकिन जब वह बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो मुआवजा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वह बच्चा व्यक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है।
मैंने आपको अध्याय 3 के आरंभ में बताया था कि इस अध्याय की घटनाएं 2 अलग अलग स्थानों पर घटित हुई। पहले 13 पदों में जो कुछ घटित हुआ वह माउंट सिनाई पर हुआ, परंतु इसके बाद पद 14 से आरंभ होकर जो कुछ घटित होता है वह सिनाई रेगिस्तान में घटित होता है, जब वे माउंट सिनाई से दूर चले गए थे।
अब मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं। जब तक कोई बारीकी से न देखें और इब्रानी न जाने, यह मान लेना आसान है कि लेवियों की गिनती करने का तरीका, गिनने वाले की उम्र के अंतर को छोड़कर, लगभग वैसा ही था जैसा कि सभी इसराइलियों की सामान्य जनगणना के साथ किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जनगणना मनुष्यों द्वारा भी नहीं की गई थी। आइए अध्याय 3 का कुछ भाग पुनः पढ़ें, गिनती 3:14 को दोबारा पढ़ें। अंत।
पद 15 और 16 में जहां मूसा द्वारा लेवी की जनगणना से निपटने की बात की गई है, अधिकांश बाइबल अनुवाद कहते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा या वचन पर उनकी गिनती की, लेकिन यह लक्ष्य से भटक गया।
इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद आमतौर पर गिने या गिने जाने के लिए किया जाता है वह है पाकद, और इसके कई अर्थ हैं। इस संदर्भ में शायद आधुनिक अंग्रेजी शब्द नंबर या गिनती से बेहतर होगा रिकॉर्ड। इसके अलावा इब्रानी में इस पद में परमेश्वर के शब्द या आज्ञा के रूप में अनुवादित शब्द अल्पी है, और अधिक सटीक रूप से इसका अर्थ है आधुनिक अंग्रेजी भाषा के दृष्टिकोण से भविष्यवाणी। दूसरे शब्दों में जनगणना के परिणाम सीधे परमेश्वर से मूसा से संबंधित थे, ये परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी थी, एक बहुत ही खास घोषणा जो एक स्मारकीय उद्देश्य के लिए की गई थी। न तो मूसा और न ही हारून, न ही लेवी गोत्र के सरदार और न ही कोई इंसान लेवियों की गिनती में शामिल था। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला था क्योंकि इसके केंद्र में छुटकारे का मुद्दा था। इसके बजाय यहोवा ने खुद जनगणना की और मूसा को यहोवा की ओर से एक भविष्यवाणी के जरिए परिणाम बताए गए, और फिर परमेश्वर ने जो कहा उसे लिख लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया। मैं इन आयतों में वर्णित छुटकारे के सभी सिद्धांतों के बारे में बात करते हुए एक घंटा बिता सकता हूं, वही सिद्धांत जो यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रकट हुए थे। लेकिन मैं अभी सिर्फ एक का जिक्र करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि यह आपकी आत्मा में गहराई तक जाएगा। दुनिया के सभी चर्चों और सभाओं के नेताओं और एल्डर्स के लिए यह अच्छा नहीं होगा कि वे यह निर्धारित करने के लिए जनगणना करें कि कितने लोग वास्तव में छुड़ाए गए हैं या इंजील ईसाई ईजी में बचाए गए हैं। पवित्र शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि प्रभु और केवल प्रभु ही यह निर्धारण करते हैं। विश्वासियों के उत्साह से पहले एक पल में बचाए गए लोगों की जनगणना चर्च या सभास्थली के रिकॉर्ड के अनुसार नहीं की जाएगी, जैसा कि मनुष्यों की गणना द्वारा निर्धारित किया गया है, यह स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाएगा। वह बपतिस्मा प्रमाण पत्र या चर्च या सभास्थली की सदस्यता भूमिका पर आपका नाम या यह कि आपको एल्डर या डीकन के रूप में चुना गया या नियुक्त किया गया, या फिर अगर आप पादरी या रब्बी हैं और आपको धर्म संबंधी प्रमाण पत्र मिला हुआ है, ये सभी मनुष्य की धार्मिक गतिविधियों में अच्छी और सार्थक बातें हैं। लेकिन जब परमेश्वर अपनी अंतिम जनगणना करता है तो इनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके परिणामों में शाश्वत है कि जो लोग छुराए गए हैं और डिफॉल्ट रूप से जो नहीं है उनकी जनगणना की जाए। पोप या बिशप या पादरी या रब्बी या चर्च बोर्ड या आराधनालय समिति या किसी भी व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा प्रभु यह सुनिश्चित करेगा कि एक भी विश्वासी को गलती से अनदेखा नहीं किया जाएगा और पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर भी यह संभावना जितनी आनंददायक और आश्वस्त करने वाली है, यह भी समझें कि जिसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए उसे गलती से शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के दिल के अपने अंतरंग और पूर्ण ज्ञान के आधार पर यह निर्णय लेगा, और क्या उस व्यक्ति ने मानव जाति के लिए ईश्वर द्वारा किए गए उद्धारक प्रावधान यीशु हमारे उद्धारकर्ता को पूरी तरह से स्वीकार किया है। मनुष्य द्वारा मनुष्य को दिए जाने वाले सभी विशेष धार्मिक दर्जे और सम्मान और उपाधियां मायने नहीं रखेंगी। हमारा उपस्थिति रिकॉर्ड, हम कितने अच्छे हैं, सभी सही बातें कहते हैं और ईमानदारी से उन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं जो ईश्वरीय लगते हैं लेकिन हैं नहीं, और कई चीजें जो लोगों को प्रभावित करती हैं वे निर्णय का हिस्सा नहीं होंगी। ठीक वैसे ही जैसे लेवीय व्यवस्था में यहोवा ने स्वयं लेवियों की गिनती की थी, केवल परमेश्वर ही विश्वासियों की जनगणना करेगा और उन्हें अपने स्वर्गीय जीवन की पुस्तक में दर्ज करेगा, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हृदय और आत्मा को देख सकता है कि वह वास्तव में क्या है। खैर, अगले कुछ पदों में हमें वंशावली की एक श्रृंखला मिलती है, क्योंकि लेवियों को उनके कुल के अनुसार विभाजित किया जाना था और फिर उन्हें पुरोहिती जो केवल हारून के कुल से ही आ सकती थी, और तंबू से संबंधित कर्तव्यों के लिए अलग अलग कर्तव्य सौंपे जाने थे। हालांकि ये कर्तव्य केवल अस्थाई होंगे, क्योंकि एक बार जब वे जंगल में 40 साल बिताने के बाद वादा किए गए देश में पहुंचे तो कर्तव्यों में थोड़ा फेर बदल हुआ, क्योंकि परिस्थितियां, काफी हद तक बदल गई क्योंकि वे भटकने वाले से एक स्थायी लोगों में बदल गए। यहां हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह तकनीकी रूप से केवल 40 साल के भटकने के समय पर लागू होता है।
आज हम परिवार के नामों की इस लंबी सूची में उलझने वाले नहीं हैं, हालांकि इसमें से कुछ प्रासंगिक बातें सीखी जा सकती हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुजारी और लेवियों को जंगल के तंबू और इसराइल के 12 गोत्रों के बीच खुद को खड़ा करना था, और पवित्र भूमि और इसराइल के लोगों या किसी और के लिए के बीच एक बारिया सुरक्षात्मक बाधा की तरह काम करना था। ये एक मध्यस्थ या सिफारिश करने वाला या यहां तक कि परमेश्वर के नियुक्त सेवक की भूमिका को और भी परिभाषित करता है। ये सिर्फ लोगों से परमेश्वर तक संदेश ले जाने, जैसे कि मध्यस्थ प्रार्थना में, और परमेश्वर से लोगों तक, जैसे कि शिक्षक बनना या सुसमाचार का उच्चारण करना का मामला नहीं है। यह परमेश्वर को उसकी पवित्रता को खतरे में पड़ने से बचाने के बारे में है, और यह लोगों को परमेश्वर द्वारा उसके पवित्रता पर अतिक्रमण करने के कारण नष्ट होने से बचाने के बारे में भी है, चाहे जानबूझकर या गलती से। यीशु की भूमिका को समझने की कोशिश करते समय इसे भी इसमें शामिल करें, और कुछ हद तक उसके शिष्यों के रूप में हमारी जिम्मेदारियों को भी। यह एक ऐसी भूमिका है जिसके बारे में शायद ही कभी सोचा या चर्चा की जाती है, लेकिन यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है जिसे हर आधुनिक आस्तिक अपने कंधों पर उठाता है।
उचित रूप से हम देखते हैं कि लेवी गोत्र के संस्थापक के तत्काल पुत्र याकूब के पुत्र लेवी पहले सूचीबद्ध हैं। वे गेरशोन, कहात और मरारी हैं। हालांकि इस सूची में एक नाम छूट गया है जो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि यह नाम एक महिला का है, योकोबेद। योकोबेद गेरशान, कहात और मरारी की बहन थी, लेकिन हम योकोबेद को मूसा और हारून की मां के रूप में अधिक जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अग्राम मूसा और हारून के पिता कहात का बेटा था। इसका मतलब यह है कि अधाम ने अपने पिता की बहन अपनी चाची योकोबेद से शादी की थी, और इसलिए कहात ने मूसा और हारून के माता पिता दोनों की जैविक रेखा बनाई। बेशक अग्राम और योकोबेद की शादी तब हुई थी जब इसराइल अभी भी मिस्र में था। यह स्थिति माउंट सिनाई के बाद नहीं हो सकती थी, क्योंकि विवाह के विषय पर मूसा को दी गई व्यवस्था में इस प्रकार के घनिष्ठ पारिवारिक अंतर विवाह की अनुमति नहीं दी गई थी। पद 22 से शुरू करते हुए हम लेवियों की संरचना को उनकी जनगणना के अनुसार देखना शुरू करते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने किया था और फिर मूसा ने दर्ज किया था। गेरशोन की पारिवारिक रेखा को आगे दो पंक्तियों में विभाजित किया गया था, जो उसके दो बेटों लिबनी और शिमी का प्रतिनिधित्व करते थे। लेवी के बेटे गेरशोन के वंशजों की कुल गिनती एक महीने या उससे अधिक उम्र के 7,500 पुरुष थे। उन्हें पश्चिम में मिलन के तंबू के पीछे तीसरा सबसे प्रतिष्ठित शिविर स्थल शिविर लगाने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके निवास स्थान के कर्तव्यों में निवास स्थान की संरचना के कुछ हिस्सों की देखभाल करना शामिल था। हालांकि जब हम इस अंश को अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यह खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि अधिकांश अनुवादों में तंबू तंबू, इसका आवरण और पर्दा के प्रभाव के बारे में कुछ कहा गया है। निवास स्थान और तंबू के बीच क्या अंतर है? क्या वे एक ही चीज नहीं है? वास्तव में ये शब्द कपड़े और खाल की विभिन्न परतों को संदर्भित करते हैं जो एक साथ तंबू पवित्र स्थान बनाते हैं। इसलिए अधिक सटीक रूप से शब्द तंबू कपड़े की आंतरिक परत को संदर्भित करता है, शब्द तंबू बकरी के बालों की मध्य परत को संदर्भित करता है, और शब्द आवरण चमड़ीदार राम की खाल के बाहरी आवरण को इंगित करता है, और संभवतः जलरोधक शीर्ष आवरण को भी इंगित करता है जो संभवतः पोरपोइज की खाल से बना होता है। इसके अलावा शब्द स्क्रीन से यह तंबू में बाहरी प्रवेश द्वार को इंगित करता है, वह पर्दा जो आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश मार्ग में लटका हुआ है। यह आंतरिक पर्दा नहीं है, परोखेत जो पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता है। गेरशोनियों ने होमबलि की वेदी और बाहरी पर्दे को उसके खंभे से लटकाने वाली रस्सियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। कहात लेवी का एक और पुत्र, कि वंशावली चार पंक्तियों या कुलों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक कहात के चार पुत्रों का प्रतिनिधित्व करता था। उनमें से एक वह वंश था जिससे मूसा और हारून आए थे, अम्रामिट्स। इस परिवार समूह के पुरुषों की संयुक्त गिनती 8,300 थी। उन्हें तंबू के दक्षिण की ओर डेरा डालना था, डेरा डालने के लिए दूसरा सबसे प्रतिष्ठित स्थान। उनके कर्तव्यों में वाचा के संदूक, शोभरेड की मेज, मेनोराह, धूप की स्वर्ण वेदी और सभी विभिन्न अनुष्ठान बर्तनों जैसे अग्निपात्र, स्वर्ण घरे, पशु बलि के रक्त को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले कटोरे आदि की देखभाल करना था। ध्यान दें कि ये कर्तव्य गैर पुजारियों के सर्वोच्च कर्तव्य थे। वह समूह जिसे बाइबल आम तौर पर सिर्फ लेवियों के रूप में बुलाती है। कहानियों ने तंबू के अंदर की चीजों की देखभाल की। पहला समूह जिसके बारे में हमने चर्चा की वह गेरशोन का समूह था, जो उन चीजों की देखभाल करता था जो तंबू के अंदर और बाहर के बीच बाधा थी, या वे चीजें जो तंबू के पूरी तरह बाहर स्थित थी, जैसे होमबलि की वेदी। तंबू के अंदर रखी वस्तुओं को आमतौर पर तंबू के बाहर रखी वस्तुओं की तुलना में अधिक पवित्र और प्रतिष्ठित माना जाता था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह भ्रमित करने वाला हो सकता है, एक बार जब परमेश्वर ने पुरोहिती की स्थापना की और माउंट सिनाई पर घटित घटना, तो उसने लेवी के गोत्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया, पुजारी और गैर पुजारी। पुजारी अनुष्ठान करते थे और कानून की शिक्षा देते थे, और उन्हें पुजारी या इब्रानी में कोहनिम कहा जाता था। गैर पुजारी लेवी के गोत्र के शेष लेवियों की उपाधि से जाने जाते थे। ये वे लोग थे जो तंबू और बाद में मंदिर के आसपास नीले कॉलर का काम करते थे। जैविक और वंशावली की दृष्टि से पुजारी और लेवी सभी लेवी के गोत्र का हिस्सा थे, लेकिन परमेश्वर ने हारून के वंशजों पुजारियों को लेवी के गोत्र के शेष लोगों की तुलना में उच्च दर्जा दिया। इसीलिए बाइबल में इस बिंदु से आगे 10:9, कई बार जब पवित्र शारत्र लेवी नीले रंग के कामगारों का उल्लेख करता है, तो वह केवल उन लेवी नीले रंग के कामगारों का उल्लेख करता है, न कि पुजारियों का। और हमेशा जब पवित्र शास्त्र पुजारियों का उल्लेख करता है, तो उसमें किसी भी तरह से उन नीले कॉलर वाले कामगार लेवियों को शामिल नहीं किया जाता है। हम अक्सर लेवी पुजारी वाक्यांश देखेंगे, लेकिन भ्रमित ना हो, इसका उद्देश्य पाठक को यह याद दिलाना है कि पुजारी लेवी के गोत्र से आता है, और केवल लेवी के गोत्र से कोई अन्य गोत्र पुजारी में भाग नहीं ले सकती। दुख की बात है कि अधिकांश ईसाई टिप्पणीकार लेवियों और पुजारियों को एक ही चीज के लिए दो शब्द मानते हैं, और इसलिए हमें टैबरनकल और बाद में मंदिर के आसपास जो कुछ हुआ उसकी एक बहुत ही गलत तस्वीर मिलती है। लेवी का तीसरा पुत्र मरारी था। मरारी का वंश दो कुलों में विभाजित हो गया क्योंकि उसके दो बेटे थे। मरारी के वंश से कुल पुरुषों की गिनती 6,200 थी। उन्हें तंबू के सबसे कम प्रतिष्ठित हिस्से उत्तर में डेरा डालने का निर्देश दिया गया था। उन्हें पवित्र तंबू के ढांचे को बनाने वाले तख्तों की देखभाल और परिवहन करना था, और बाहरी आंगन को घेरने वाली कपड़े की दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी खंभे और कुर्सियां और रस्सियां। सबसे प्रतिष्ठित शिविर स्थल मूसा और हारून तथा हारून के पुत्रों अर्थात याजकों को मिला। वे तंबू के पूर्व या सामने की ओर डेरा डालते थे। वे तंबू को जोड़ते या अलग नहीं करते थे। वे इसका कोई भाग या इसका सामान नहीं ले जाते थे। यह लेवियों का काम था। और जैसा कि आयत 38 में स्पष्ट है, याजकों का उद्देश्य पवित्र स्थान के कर्तव्यों का पालन करना था, यानी अनुष्ठान करना। और यह कर्तव्य उनकी अपनी ओर से नहीं, बल्कि सभी इसराइलियों की ओर से किया गया था। यह सभी इसराइली जनजातियों की खातिर था कि लेवियों और याजकों ने जो किया वह उन्होंने किया। पद 38 का अंत एक बार फिर इस बात पर जोर देता है कि कोई भी गैर अधिकृत व्यक्ति जो तंबू के बहुत करीब आता है या पुजारी का कार्य करने का प्रयास करता है, उसे मार दिया जाना चाहिए। कोई आश्चर्य करता है कि इसका उल्लेख इतनी बार क्यों किया गया है। क्या परमेश्वर ने इन इसराइली लोगों को मूर्ख समझा? खैर, इस तथ्य के अलावा कि यहोवा यह बहुत स्पष्ट कर रहा है कि उसके निकट होने से खतरे के साथ साथ आशीर्वाद भी मिलता है, कुछ ऐसा जो आधुनिक चर्च में सबसे साहसी मिशनरियों को समझ में आता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस युग में यह मुख्य रूप से इज़राइल के ज्येष्ठों के लिए एक चेतावनी है। याद रखें कि हम ऐसे समय में हैं जब सभी इज़राइली ज्येष्ठों का विशेष दर्जा उनसे छीनकर लेवियों को सौंप दिया जा रहा है। सदियों से ये इज़राइली ज्येष्ठ अपने परिवारों के लिए पुजारी जैसे कार्य करने के लिए अद्वितीय सम्मान और कर्तव्य वाले लोग थे। आप शर्त लगा सकते हैं कि जहां कुछ ज्येष्ठों को यह करने की जरूरत न होने से राहत मिली होगी, वहीं अन्य लोगों के अभिमान को ठेस पहुंची होगी और वे इस बदलाव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और निश्चित रूप से उनका यह सब इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, और इसलिए वे खुद को उन अनुष्ठानों और समारोहों में शामिल करना जारी रखना चाहते थे जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे। परमेश्वर का उत्तर है, इसके बारे में सोचना भी मत, पास आओ और मर जाओ। वैसे ध्यान दें कि पुरोहित परिवारों को बनाने वाले पुरुषों की कोई गिनती नहीं दी गई है, केवल 3 गैर पुजारी परिवारों की कुल गिनती का उपयोग किया गया है। जिन लोगों की बाइबल में पहले से ही एक अनुमानित सुधार शामिल नहीं है, उनके लिए हमारे पास मौजूद सबसे पुरानी इब्रानी पांडुलिपियों से संकेत मिलता है कि उन 3 गैर पुजारी परिवारों में से प्रत्येक की गिनती 22,300 को एक साथ जोड़ने पर वह कुल गिनती 22,000 के समान नहीं है। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि यह कहीं ना कहीं एक सामान्य लिपिक त्रुटि के कारण था। समस्या यह है कि इब्रानी में गिनती 3:6 के समान है। 3 शीण लेम्ड शीण है, जबकि 6 केवल शीण शीण है। इस बिंदु पर एक और तरह की जनगणना का आदेश दिया गया है। इज़राइल के जनजातियों की पहली जनगणना में केवल 20 वर्ष की आयु से शुरू होने वाले पुरुषों की गणना की गई थी। एक नई गणना होनी है जो 1 महीने की आयु से शुरू होने वाले इज़राइली ज्येष्ठ पुरुषों की गणना करती है, यानी यह नई गणना उसी मानदंड का उपयोग करती है जिसका उपयोग लेवियों की गणना करने के लिए किया गया था। और जो पता चला है वह यह है कि उनके स्थान पर लेवी पुरुषों की तुलना में 273 अधिक इजरायली ज्येष्ठ हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजरायलियों के ज्येष्ठ पशुओं, इब्रानी में बेहेमाह जिसका अर्थ है भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू खेत के जानवर, इसमें बकरियाओं, भेड़ें और गायें शामिल हैं, को लेवियों के जानवरों से बदलकर छुराया जाना था। यदि यह स्पष्ट नहीं है छुटकारे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे लेवियों में सभी लेवी पुरुष शामिल थे, न कि केवल लेवी ज्येष्ठ, लेकिन धर्मनिरपेक्ष इजरायलियों 12 जनजातियों में केवल ज्येष्ठों को ही छुराया जा रहा था, सभी इजरायली पुरुषों को नहीं। समझे? किसी भी जन्मक्रम का एक नियमित लेवी पुरुष एक ज्येष्ठ इजरायली पुरुष को मुक्ति दिलाता था।
तो इस समस्या के बारे में क्या किया जाए कि हर इजरायली ज्येष्ठ पुत्र को छुराने के लिए पर्याप्त लेवी पुरुष नहीं थे। एक छुटकारे की कीमत तय की गई और वह कीमत 5 शेकेल थी। इतिहास के इस बिंदु पर शेकेल एक सिक्का नहीं था जैसा कि अब है और यीशु के समय में था, बल्कि उस समय शेकेल एक सिक्का था जैसा कि अब है। शेकेल सिर्फ वजन की एक इकाई थी, जैसे एक औंस या एक ग्राम।
273 इजरायली पहलौठे जिन्हें पैसे से छुराया जाना था, उन्हें चिट्ठी डालकर चुना गया और चुने गए लोगों को प्रत्येक को 5 शेकेल चांदी लेकर आना था और मूसा के सामने पेश करना था, जिसने फिर उसे हारून को दे दिया। इस प्रकार 22,000 इजरायली पहलौठों को 22,000 लेवी पुरुषों के साथ एक एक करके छुराया गया और शेष 273 इजरायली पुरुषों को प्रत्येक को 5 शेकेल चांदी देकर छुराया गया, जिसे पुरोहित वर्ग को दिया गया। इस तरह से प्रत्येक इजरायली पहलौठे को छुराया गया और इस प्रकार अब वे स्वतः ही प्रभु की सेवा के लिए समर्पित नहीं रहे। हस्तांतरण पूरा हो गया। अब लेवियों का स्थान इजरायली ज्येष्ठों के स्थान पर परमेश्वर का था और इजरायली ज्येष्ठों ने लेवियों के लिए अपना विशेष दर्जा खो दिया। मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि यह अधिकांश भाग के लिए एक आध्यात्मिक स्थिति थी जिसे ज्येष्ठों ने खो दिया और लेवियों ने प्राप्त किया।
परिवार के अधिकार और धन और नेतृत्व आदि के बारे में अन्य विशिष्ट ज्येष्ठ परंपराएं और रीति रिवाज अभी भी पूरी तरह से लागू हैं।
तो इस समय से आगे सभी भावी इजरायली पहलौठों की स्थिति क्या थी? खैर, इब्रानियों ने महसूस किया कि प्रत्येक इब्रानी पहलौठे को छुड़ाना अभी भी आवश्यक था। यह बात कम महत्वपूर्ण थी कि परमेश्वर अभी भी सभी पहलौठों का मालिक था, बल्कि यह कि यह निर्गमन की स्मृति में किया गया था जब यहोवा ने मिस्र के सभी पहलौठों को मार डाला था, लेकिन इज़राइल के सभी पहलौठों को बचा लिया था।
तो विचार यह था कि जब कोई ज्येष्ठ पुत्र पैदा होता था तो माता पिता कृतज्ञता में उस बच्चे को ईश्वर को समर्पित कर देते थे। फिर 30 दिनों के बाद वे पुरोहिती के पास जाकर छुटकारे की कीमत चुकाकर उस ज्येष्ठ पुत्र को वापस छुड़ा लेते थे। जब कोई ज्येष्ठ पुत्र पैदा होता था तो 30 दिनों के बाद एक समारोह आयोजित किया जाता था और पिता अपने बेटे को तंबू में ले जाता था और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पुरोहिती को 5 शेकेल चांदी का भुगतान करता था। ऐसा करने से ज्येष्ठ पुत्र अब ईश्वर की सेवा में समर्पित नहीं रहा। उसे ईश्वर से छुड़ाया गया। छुटकारे की कीमत 5 शेकेल थी। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, यह केवल ज्येष्ठ पुत्र से संबंधित था। यदि किसी व्यक्ति के कई पुत्र थे तो वह केवल पहले जन्मे पुत्र को ही छुराता था, अन्य को नहीं, क्योंकि अन्य पुत्र ईश्वर को समर्पित नहीं थे, जिससे वे अनिवार्य रूप से ईश्वर की पवित्र संपत्ति बन गए। सैद्धांतिक रूप से अगर वह छुटकारा नहीं हुआ तो उस ज्येष्ठ पुत्र को जीवन भर परमेश्वर की सेवा करने या पुरोहिताई करने या दोनों के लिए बाध्य होना पड़ता था। वास्तव में ऐसा बहुत कम था कि ज्येष्ठ पुत्र पुरोहिताई के लिए कुछ कर सकता था, क्योंकि पुरोहिताई करना लेवी का काम था, और जो कोई लेवी न हो परंतु लेवी का काम करे उसे मार डाला जाए।
अब कुछ माता पिता ऐसे थे जिन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को परमेश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे छुराया नहीं। हम इसे विशेष रूप से नाजरीत व्रत में देखेंगे, जिसके अनुसार एक बच्चे को उसके जन्म से पहले ही परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम इसे बाइबिल में शिमशोन के साथ देखते हैं। वैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी छुटकारा नहीं मिला, हालांकि वह ज्येष्ठ पुत्र था। क्यों? शायद इसी कारण से जिसकी उम्मीद शायद कम ही लोगों ने की होगी, यूहन्ना सख्त अर्थों में यहूदी नहीं था, वह एक लेवी था। उसके पिता एक पुजारी थे और उसकी मां एलिशेबा एलिजाबेथ हारून के वंश से थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला छुटकारे के योग्य नहीं था, बल्कि लेवी के गोत्र के सभी पुरुष सदस्यों की तरह, जो कि गिनती की पुस्तक में शुरू होता है, वह स्थायी रूप से परमेश्वर की सेवा में है और उसे उस पद से छुटकारे नहीं मिल सकता।
वास्तव में यीशु को भी अपने सांसारिक पिता यूसुफ द्वारा चुकाई गई कीमत के माध्यम से परमेश्वर से छुड़ाया गया था। हम इस कहानी को लूका अध्याय 2 में पाएंगे। अब मेरे साथ वहां जाए ताकि हम देख सकें कि यह पूरा सिद्धांत जिसके बारे में हम गिनती में सीख रहे हैं यीशु को केंद्र में रखकर घटित हुआ, अभ्यास के शुरू होने के लगभग 1300 साल बाद।
लूका 2 के 21 से 35 पढ़ें। यहां एक ऐसी कहानी है जिससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन शायद हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हम जो देख रहे हैं वह एक यहूदी बच्चे, पहला बच्चा का एक मानक, हर दिन का पहला जन्म मोचन है।
इस मामले में यह यीशु है। इस पूरी प्रक्रिया का इब्रानी नाम पिडियोन हेबेन है। पिडियोन हेबेन के नियम के अनुसार ध्यान दें कि 8वें दिन यीशु के खतने तक उसे उसका नाम नहीं दिया गया था। इस देरी का कारण यह है कि नामों का बहुत महत्व था, और जब तक यीशु 8 दिन का नहीं हो गया और उसका खतना नहीं हो गया, तब तक उसे अब्राहमिक वाचा के प्रावधानों के तहत नहीं रखा गया था। 8वें दिन उसे अपना इब्रानी नाम मिला, क्योंकि वह आधिकारिक रूप से एक इसराइली बन गया था।
इसके बाद यह कहा गया है कि मुक्ति व्यवस्था अर्थात तोरह के अनुसार शुद्धिकरण के समय के बाद हुई, जब यूसुफ और मरियम यीशु को यरूशलेम ले गए। जिस शुद्धिकरण की चर्चा की जा रही है वह यीशु के बारे में नहीं है, यह मरियम के बारे में है, और यह भी पिडियोन हेबेन के नियम में निहित है। जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, अगर वह लड़का था तो वह 40 दिनों की अवधि के लिए अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध रहती थी। इसलिए हम जानते हैं कि यह 40 दिनों के बाद था जब लूका में यह दृश्य हुआ, क्योंकि वह अशुद्ध अवस्था में मंदिर में नहीं आ सकती थी। इसके अलावा जिस बलिदान की बात की गई है, 2 कबूतर या 2 जंगली कबूतर, वह फिर से मरियम से संबंधित है, न कि शिशु यीशुआ से। यह बलिदान बच्चे के जन्म के बाद उसके अनुशान शुद्धिकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक है। मंदिर जाना कुछ हद तक एक कठिन परीक्षा थी, और जब कई चीजें हो सकती थीं, एक यात्रा में ही पूरा हो जाता है, जो कि आम तौर पर होता है। इसलिए मरियम को शुद्ध किया गया और यीशु को जाहिर तौर पर उसी यात्रा में छुड़ाया गया। इस अंश में यीशु के छुटकारे के लिए दी गई राशि का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह 5 शेकेल की मानक राशि रही होगी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार अमीर था या गरीब। छुटकारे की कीमत हर इब्रानी ज्येष्ठ के लिए समान थी। अब कुछ लोगों का मानना है कि यीशु का एक बड़ा भाई था जिसका नाम याकूब था, और जो निश्चित रूप से यूसुफ की एक अलग पत्नी से पैदा हुआ होगा। यह बात तो अच्छी तरह से स्थापित है कि याकूब यीशु से संबंधित था, लेकिन यह सोचना कि याकूब यूसुफ का ज्येष्ठ पुत्र था लूका के इस अंश की घटनाओं से गलत साबित होता है, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि यीशु को उसके ज्येष्ठ पुत्र की स्थिति से मुक्ति मिल गई है। इसमें एक चेतावनी यह है कि यूसुफ यीशु का जैविक पिता नहीं था, और वह यह अच्छी तरह से जानता था। इसलिए संभवतः यूसुफ को प्रभु द्वारा आदेश दिया गया था, या उसने ऐसा करने का बीरा उठाया था कि वह स्वर्गीय पिता की ओर से छुटकारे के ज्येष्ठ पुत्र के अनुष्ठान के लिए यीशु को मंदिर ले जाए। इस प्रकार परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे उद्धारकर्ता को भी यहोवा से छुड़ाया गया, हालांकि वह वास्तव में ईश्वर का अवतार था। यह केवल उस गूढ़ विडंबना को दर्शाता है जिससे हमें निपटना है कि यीशु 100% मनुष्य था, और इसलिए वह तोरह के प्रावधानों के अधीन था जैसा कि कोई अन्य मनुष्य था, और फिर भी वह 100% ईश्वर था और इसलिए तोरह था, और इसलिए दुनिया ने कभी किसी भी प्राणी को नहीं जाना था। अगले सप्ताह हम गिनती अध्याय 4 शुरू करेंगे।